السلام عليكم، ठीक جزاكم الله خير. جی تو کلاس شروع کرتے ہیں. آخری حدیث ہے اس بات کی نا. چلیں الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد المبارک وسلم اللہم ارنا الحق حق ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو حدیث نمبر 296 یہ اس باب کی یعنی اخبار المغیبات والا جو باب تھا اس کی آخری حدیث ہے. روضۃ الطالبین میں یہ 296 ہے اور اس کا پیج نمبر 462 ہے. اس کی سند اس طرح سے ہے کہ عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقرا القرآن بلحون العربی واصواتها وإياكم ولحون اهل العشق ولحون اهل الكتابين وسيجيء بعدي قوم يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والنوح لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأن. ترجمہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اہل عرب کی طرح اور ان کی آوازوں میں پڑھو، اہل عشق اور اہل کتاب کے طریقے کے مطابق پڑھنے سے بچو. میرے بعد ایک جماعت پیدا ہوگی جس کے افراد راگ اور رونے کی طرح آواز بنا کر قرآن پڑھیں گے، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، نیز ان کی قراءت سن کر خوش ہونے والوں کے دل فتنے میں مبتلا ہوں گے. تو لفظی تحقیق کے ساتھ لفظی ترجمہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقرا القرآن، جیسے کہ سب کو ہی معلوم ہوگا انشاءاللہ کہ قرآن حکیم بلکہ وحی کا پہلا لفظ تھا اقرا، یعنی پڑھو پڑھ، لیکن وہ اقرا کا جو لفظ تھا وہ ایک شخص کو مخاطب کر کے کہا جا رہا تھا، ٹھیک ہے؟ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے مخاطب تھے، اس کے سیکنڈ پرسن تھے، تو یہ سیکنڈ پرسن کا ٹینس ہے، لیکن واحد مذکر، ٹھیک ہے، واحد مذکر حاضر، فعل امر معروف، ٹھیک ہے، کیونکہ فعل امر ہے، کمانڈ ہے یہ، تو واحد مذکر حاضر فعل امر معروف کیا ہوتا ہے؟ اقرا، لیکن اسی کو جب آپ جمع بناتے ہیں تو اقراؤ بن جاتا ہے، یعنی تم سب لوگ پڑھو. کس چیز کو پڑھو؟ القرآن، کیونکہ القرآن یہاں پر حالت نصب میں ہے، تو اس وجہ سے یہ مفعول بن رہا ہے اقرؤ فعل کا. تو تم سب قرآن پڑھو بلحون العربی، عرب کے لحون کے ساتھ، با حرف جر ہے، لحون جو ہے وہ نیچے لغات میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ جمع ہے لحن کی، اور لحن کا مطلب ہوتا ہے لہجہ، آواز. اللحن من الاصوات کہتے ہیں موضوع آواز کو، جیسے الحان آتی ہے، لحن لحن فی القرآن کے خوش آوازی سے پڑھنا، تو لحن کا مطلب ہوتا ہے یہ جو اسم ہے نا وہ ہے لحن، یعنی ہا کے اوپر پیش ہے، سوری ہا کے اوپر سکون ہے، لحنن، ٹھیک ہے، یہ اسم ہے. اور اسی کا فعل ماضی جو ہے وہ ہے لحنا، یعنی اس نے خوش آوازی سے پڑھا، لحنا کا مطلب اس نے خوش آوازی سے پڑھا، ٹھیک ہے. تو انہیں کی یعنی اسی اسم کی جمع لحن آتی ہے. تو یعنی عرب کی خوش آوازی کے طریقے، ٹھیک ہے، یا خوش آوازیں، ویسے خوش آوازیں کا لفظ کوئی اردو میں ہوتا نہیں ہے، لیکن ود دی ساؤنڈز آف عرب یا ود دی ان دا ڈائلیکٹس آف عرب، ٹھیک ہے، یہ آپ انگلش میں ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں، ان دی ڈائلیکٹس آف عرب، ٹھیک ہے، بیکاز عربوں کا بھی ایک ڈائلیکٹ نہیں ہوتا، عربوں کے بھی ایک سے زیادہ ڈائلیکٹس ہوتے ہیں، لیکن ان سب ڈائلیکٹس میں مور اور لیس قرآن جو ہے وہ نازل ہوا، ٹھیک ہے، اسی کو مختلف قراءت کہتے ہیں قرآن کی، ٹھیک ہے. تو عربوں کے سارے جو ڈائلیکٹس اس وقت رائٹس تھے ان سب کے اندر قرآن پڑھنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے؟ تو لحون سے مراد وہ ڈائلیکٹس ہو گئے، ٹھیک ہے؟ یعنی عربوں کے ڈائلیکٹس کے علاوہ تم کوئی نیا ڈائلیکٹ بنانے کی یا لہجہ بنانے کی کوشش نہ کرو، ٹھیک ہے؟ بلحون العربی واسواتها، اور ان کی آوازوں، اسوات جو ہے وہ صوت کی جمع ہے اور صوت آواز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لحون العربی و اسواتها، ہا کی جو ضمیر اسوات کے ساتھ لگی ہوئی ہے یہ پوائنٹ کر رہی ہے العرب کی طرف، ٹھیک ہے؟ یعنی ان کی آواز میں، اسواتها یعنی اس کی آواز میں، یعنی عربوں کی آواز میں، ٹھیک ہے؟ العرب کی آواز میں. وَإِيَّاكُمْ، تو یہ جو ایاکم کا لفظ آتا ہے نا، یہ یعنی ایک وارننگ کی طرح سے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایاک والاسدہ، کہ بچاؤ اپنے آپ کو شیر سے، ٹھیک ہے؟ ایاک والاسدہ اس طرح سے بولتے ہیں. تو ایاکم کا مطلب بھی کیا ہے کہ اپنے آپ کو تم بچاؤ، ٹھیک ہے؟ یہ یعنی حسر کے لیے بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر یہ حسر کے لیے نہیں بلکہ وارننگ کے لیے آیا ہے، احذار جس کو کہتے ہیں، حذر، احذار، ٹھیک ہے؟ یعنی اپنے آپ کو بچاؤ، کس چیز سے بچاؤ؟ وَلُحُونَ أَهْلَ الْعِشْقِ، ٹھیک ہے؟ واو جو ہے یہ تو یہاں پر یعنی زائدہ کی طور پر ہی آ رہا ہے کہ اس کا کوئی ترجمہ نہیں کیا جائے گا اس واو کا، ٹھیک ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ یاکم بچاؤ اپنے آپ کو، وَلُحُونَ أَهْلَ الْعِشْقِ یعنی اہل عشق کے لہجوں سے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہاں پر جو لفظ عشق آیا ہے نا، تو عشق کے لفظ سے ہم تو واقف ہیں کیونکہ ہماری زبان کے اندر عشق جو ہے وہ محبت، عشق و محبت کی داستان ہے، رائٹ؟ یہ عشق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم نے اپنے مشائخ سے سنا اور جن کو کہ زیادہ علم ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے کوئی پوری حدیث کی ساری کتابیں ٹٹول کے تو نہیں دیکھی، لیکن جن علماء نے ٹٹول کے دیکھی ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے بہت زیادہ اپنا وقت لگایا ہے مطالعے کے اوپر اور تحقیق کے اوپر، تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو عشق کا لفظ ہے نا، یہ پورے ذخیرہ حدیث میں ایک دفعہ آیا ہے، پورے ذخیرہ حدیث میں، کتنی ہزاروں لاکھوں حدیث ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان سب کے اندر صرف ایک مرتبہ عشق کا لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اسی حدیث میں آیا ہے، لیکن اس حدیث کو پڑھ کر کے پتہ لگتا ہے کہ یعنی شاید یہی وہ واحد حدیث ہے جس کے اندر عشق کا لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ عربی زبان کا ہی لفظ، لیکن قرآن کے اندر یہ نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ قرآن میں عشق کا لفظ ہے ہی نہیں، قرآن میں جو ہے وہ محبہ کا لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کہ کیا ہے وہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، حب کا لفظ ہے، حب جو ہے وہ محبت کو کہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو عشق کا لفظ قرآن کہیں نہیں آیا، اور پورے حدیث کے لٹریچر میں صرف ایک دفعہ آیا ہے، اور لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ اسی والی حدیث کے اندر وہ ایک دفعہ آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اہل عشق یعنی جو اپنے عشق مجازی میں گرفتار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک ہوتا ہے عشق حقیقی، عشق حقیقی مطلب کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے عشق، ٹھیک ہے؟ اور ایک ہوتا ہے عشق مجازی یعنی مخلوق سے عشق، جو کہ عموماً جو ہے وہ ناجائز عشق کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ ٹرم. تو ان لوگوں کا ایک سٹائل ہوتا ہے بات کرنے کا، ٹھیک ہے؟ وہ جو ہے وہ نظمیں پڑھتے ہیں، وہ جو ہے گانے گاتے ہیں، وہ جو ہے وہ اشعار جو ہے وہ گنگناتے ہیں راتوں کو اٹھ کر، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں، تو ان کا ایک سٹائل جو ہوتا ہے نا بات کرنے کا، تو اس سٹائل سے تم بچو کہ اس سٹائل میں تم قرآن کی تلاوت کرنا نہ شروع کر دو، اس لیے کہ وہ تو تلاوت ہوگی نہیں اصل میں، اس لیے کہ تلاوت تو وہی ہوتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے جس سٹائل میں اس قرآن کو پڑھا اسی سٹائل میں تم پڑھو، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم اپنے سٹائل میں پڑھیں گے یا دوسرے لوگوں کے سٹائل میں پڑھیں گے تو وہ تلاوت تو کرائے گی نہیں. تو لحون اہل العشق و لحون اہل الکتابینی، اور اہل کتاب یعنی دونوں کتابینی کیا ہوتا ہے؟ دو کتابیں، یہ ڈول کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو دونوں کتابیں ہیں تورات اور انجیل، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ آسمانی کتابیں تو اور بھی ہیں، لیکن اس وقت جو کتابیں موجود ہیں نا یعنی تحریف تو ان میں بھی ہوئی بھی ہے، لیکن پھر بھی ان کے اندر اتنی زیادہ تحریف نہیں ہوئی ہے جتنی کہ دوسری آسمانی کتابوں میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ جو جن لوگوں نے ہندوازم کے اوپر ریسرچ کری ہے، انہوں نے بتایا کہ कि हिंदू मजहब जो है ना, ये भी दरअसल एक आसमानी मजहब ही है, ठीक है। और इनकी किताबें भी जो है वो आसमानी किताबें ही हैं, लेकिन उनकी किताबों में इतनी ज्यादा तहरीफ हो गई है कि उनको आसमानी किताबों में शामिल ही नहीं किया जाता। लेकिन तौरात और इंजील में तहरीफ होने के बावजूद इतनी ज्यादा तहरीफ नहीं हुई है, जिस वजह से तौरात और इंजील को हमेशा से आसमानी किताबों में शामिल किया जाता है, ठीक है। तो दो आसमानी किताबें हो गई, तौरात और इंजील, कुरान के अलावा। तो उनके इन दोनों अहले जो आसमानी किताबें हैं, उनके लोगों के लुहून से भी बचो, ठीक है। यानी वइय्याकुम लुहूना अहलिल किताबैनी, ठीक है, बात समझ आ रही है? कोई कुछ सवाल हो बीच में तो पूछ लीजिएगा। अच्छा, वह उसके बाद फरमाते हैं नबी सलाम, और सयजीउ, तो ये जो लफ्ज है इसमें सीन जो है वो मुस्तकबिल के लिए आता है, ठीक है। जैसे कल की भी हदीस में आया था ना, सीन क्या था वो, सयन कबिजु, तो के अनकरीब कब्ज कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर भी यही मतलब है कि अनकरीब आएगी, क्योंकि जाआ यजीउ, ये जो फेल होता है इसका मतलब होता है आना। तो जाआ का मतलब होता है वो आया, और यजीउ का मतलब होता है वो आएगा या वो आता है। तो सीन जो है वो वैसे ही मुस्तकबिल के लिए होता है, तो सीन लगने से ये फेले मुजारे मुस्तकबिल के लिए लॉक हो जाता है। तो सयजीउ का मतलब ये अनकरीब आएगा या आएगी, बादी मेरे बाद, ठीक है। बाद जो होता है वो इस्म ज़र्फ़ होता है, और या मुतकलम की इसके साथ लगी हुई है, यानी मेरे बाद। कौमुन, एक कौम, युरज्जुना बिल कुरानी, तो युरज्जुना का मतलब क्या होता है, नीचे इसकी तहकीक लिखी है कि युरज्जुना तरजीअन फी सौतिही, यानी अपनी आवाज को हलक में घुमाना, ठीक है, तरजीह करना अपनी आवाज को हलक में घुमाना। ये एक स्टाइल है बुलंद आवाज से बात करने का, ठीक है, बुलंद आवाज, हत्ता के तरजीह जो है वो अजान के अंदर भी कुछ लोग करते हैं। तो उसके ऊपर पूरा एक फिकी मसला है कि अजान के अंदर तरजीह करना जायज है कि जायज नहीं है, ठीक है। तो आवाज को अपनी हलक में घुमाना इस तरीके से कि वो ज्यादा लाउड हो जाए, ठीक है। आवाज किसी को यानी आ रही है, कोई कोई बता दें इनको, जजाकुमुल्लाह। तो यानी इस तरह से अपने हलक के अंदर घुमाना, तो ये लफ्ज जो है वो निकला रजा यरजू से, रुजुअन यानी रुजू का मतलब तो होता है वापस हटना, वापस आना और लौटना, ठीक है। लेकिन इसी लफ्ज रजा को जब आप बाब तफ़ईल में डाल देते हैं, बन जाता है रज्जा युरज्जु तरजीअन, ठीक है। जैसे कि सर्रफ़ा युसर्रिफ़ु तसरीफ़न, कॉमन मिसाल इसकी किताबों में लिखी हुई है। तो रज्जा युरज्जु जब ये बन जाता है बाब तफ़ईल में आकर के, तो इसका मतलब हो जाता है अपनी आवाज को हलक में घुमाना। तो रज्जा फिल मुसीबत इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी इसमें के मुसीबत के जब घूमे मुसीबत, या तुम मुसीबत के वक्त में, यानी कहो से मुराद यहाँ पर क्या है कि रज्जा फिर मुसीबत है कि तुम रुजू करो मुसीबत में, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की तरफ। खैर, ये तो एक कॉल यहाँ पे लिख दिया, या हदीस का टुकड़ा यहाँ पे लिख दिया इसकी एग्जाम्पल देने के लिए। तो युरज्जुना यहाँ पर चूंकि आवाज के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका मतलब यही होगा कि अपनी आवाज को हलक में घुमाना। तो युरज्जुना बिल कुरआनी, के मेरे बाद एक कौम अनकरीब आएगी जो कि कुरान को भी इस तरीके से पढ़ेगी कि जैसे कि राग की आवाज होती है, ठीक है। अब अपने आवाज यानी हलक के अंदर घुमा घुमा करके इस तरीके से जैसे गाने वाले पढ़ते हैं। तरजी अल गनाई व नौही, तो ये लोग जो इस तरह से घुमा घुमा करके पढ़ेंगे ना, तो इसकी हालत बयान फरमाई कि ये तरजी जो है वो इसका मसदर है, यानी अपनी आवाज को हलक में घुमाना। तरजी का मतलब ये होता है जैसे कि अभी हमने पढ़ा, ठीक है। तो वो जो अपनी आवाज को अपने अंदर घुमाएंगे ना, तो वो किस अंदाज में घुमाएंगे, अल गनाई व नौही, यानी गाने की और नौह की, नौहा जिसको कहते हैं, उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं ना, जो शिया लोग करते हैं, नौहा खानी करते हैं, तो रोना इस तरीके से बाकायदा इकट्ठे होकर के रोना, ठीक है, तो उसको नौहा करना कहते हैं। तो जैसे नीचे भी लिखा हुआ है कि अन्नौहू औरतों की जमात जो इकट्ठा होकर के रोए, निसा उ नौहिन अरबी में कहा जाता है, इस्तनाहतिल मरअतु, कि औरत ने नौहा किया। ठीक है, तो खैर नौहा का मतलब जो होता है वो वही रोने के मिल, यानी बाकायदा एक एक लय में रोना, मिल करके जो है वो गोया के जिस तरह से वो अशार पढ़ते हैं करबला के वाकये के बारे में, तो उसको नौहा कहा जाता है। तो तरजीह अल गना व नौही के इस अंदाज में अपनी आवाज को अपने गले के अंदर घुमाना जैसे कि गाने वाले और नौहा करने वाले करते हैं। ला युजाविजु हनाजरहुम, ठीक है, ला तो नफी के लिए हो गया और युजाविजु जो है वो बना जावजा युजाविजु, ठीक है, जैसे कि उर्दू में कहते हैं तजावुज करना यानी आगे बढ़ना, ठीक है, क्रॉस कर जाना, तजावुज करना कहते हैं ना कि ये अपनी हदूद से तजावुज कर चुका है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आगे बढ़ जाना, ठीक है, तो इसी का ये ला युजाविजु, इसी का ये फेले मुजारे है कि नहीं तजावुज करेगी वो हनाज रहूं उनके हलक से, हनाजर, हनाजर जो है वो हंजर की जमा है और हंजर जो है वो हलक को कहते हैं, ठीक है, तो हनाजर यानी उनके हलकों से आगे तजावुज नहीं करेगी। यानी कुरान पढ़ने से होता क्या है कि कुरान जो है वो हमारी जुबान से हम पढ़ रहे होते हैं ना, और हमारी जुबान जब हिलती है कुछ जगहों पर लगती है हमारे मुंह के अंदर, ठीक है, तो वो मखारिज कहलाते हैं, तो मखारिज के ऊपर जब हमारी जुबान लगती है, टच होती है, तो उससे क्या चीज प्रोड्यूस होती है, ठीक है, साइंटिफिकली अगर हम उसको बोलें तो वो साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना, फिजिकल चीज होती है एक साउंड वेव्स, ठीक है, हम सब ने साइंस में पढ़ा था, कुछ इंजीनियर्स ने जिसको मजीद आगे जा करके पढ़ा होगा, ठीक है, तो बेसिकली हमारी आवाज क्या होती है, साउंड वेव्स होती है, लेकिन वो साउंड वेव्स जो होती है वो एक सर्टेन अंदाज में, जैसे कि अल्लाह ताला के कलाम की साउंड वेव्स हैं, अगर वो साउंड वेव्स हमारे मुंह से निकलती हैं तो उससे क्या होता है कि उनका असर जो है वो हमारी रूह के ऊपर पड़ता है, हालांकि रूह जो है वो फिजिकल चीज नहीं है, ठीक है, रूह तो एक अमरे रब भी है जो कि एक ना समझ में आने वाली, ठीक है, यानी वमा उती तो मिनल इल्म इल्ला कलीला, कि एक ऐसी चीज है रूह के जिसका कि तुम्हें बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है, ठीक है, तो एक ना समझ में आने वाली, एक फिजिकल एग्जिस्टेंस ना रखने वाली चीज है ना रूह, लेकिन हम जब अपने फिजिकल टंग से और फिजिकल माउथ के उन लोकेशंस को मिला करके जब साउंड वेव्स क्रिएट करते हैं, वो वाली साउंड वेव्स जो कि अल्लाह ताला के कलाम की साउंड वेव्स हैं, राइट, तो उनका असर जो है वो हमारे इस रूहानी कल्ब के ऊपर या इस रूह के ऊपर पड़ता है। कल्ब तो बेसिकली उसका एक सेंटर पॉइंट होता है ना, बाकी तो पूरी की पूरी रूह ही होती है, तो उसके ऊपर असर पड़ता है कि उसके उसको तरोताजगी मिलती है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने इस रूह की गिजा रखी है, ठीक है, तो दुनिया में भी इस रूह को तरोताजगी मिलती है, फ्रेशनेस मिलती है, ताकत मिलती है, मजबूत होती है वो रूह, ठीक है, और साथ साथ क्या होता है कि जो फरिश्ते हमारे कंधों के ऊपर बैठे होते हैं वो फरिश्ते जो है वो इस रूह के लिए सवाब भी लिख लेते हैं नामे अमाल के अंदर, ठीक है, ताकि सिर्फ ये नहीं कि इस दुनिया में ही इस रूह का फायदा हो बल्कि आखिरत में भी इस रूह का फायदा हो, ठीक है, क्योंकि वो सवाब स्टोर हो जाता है और आखिरत के अंदर हमारा जिस्म तो नहीं पहुंचता, हालांकि ये आवाज किसने निकाली थी, ये आवाज हमारे जिस्म ने निकाली थी, राइट, लेकिन सवाब किसको मिलेगा, इसका रूह को मिलेगा, इसलिए कि ये जिस्म जो है वो तो जन्नत में नहीं जाएगा ना, जन्नत में तो एक नया जिस्म देकर के हमें भेजा जाएगा, राइट, तो फायदा इस जिस्म का नहीं होगा, फायदा उस रूह का होगा जो कि इस दुनिया के अंदर है, फिर वो ट्रांसफर हो जाएगी अगले जहान के अंदर, ठीक है, तो ये जो एंट्री पॉइंट का कॉन्सेप्ट है, कुछ लोग आप में से शायद मौजूद हों, सैटरडे के छोटा से साजिद ने बयान किया था, उस बात करी थी कि जो एंट्री पॉइंट है हमारे अंदर, ठीक है, रूहानी बातों का, वो एंट्री पॉइंट जो है वो हमारा ये फिजिकल जिस्म है, ठीक है, फिजिकल जिस्म से एंटर होती हैं ये रूहानी नेमतें, ठीक है, ये अल्लाह ताला की रहमतें, ये कहाँ से एंटर होती हैं, कान से एंटर होती हैं, जब आप कोई अच्छी चीज सुनते हैं, राइट, अल्लाह का कुरान सुने, अल्लाह का जिक्र सुने, कोई अच्छा बयान सुने, ठीक है, कोई नसीहत की बातें सुने, तो एंटर कहाँ से होती हैं ये चीज हमारे अंदर, कान से होती है ना, और कान जो है वो क्या चीज है, रूहानी चीज तो नहीं है, कान तो जिस्मानी चीज है, राइट, फिजिकल चीज है एक, उसी तरीके से आंखों से जब हम काबतुल्लाह को देखते हैं या अपने वालिदैन को देखते हैं मोहब्बत की निगाह से या अपने बीवी शोहर को देखते हैं, राइट, कि अल्लाह ताला ने मुझे ये नेमत अता की है। तो इस नियत के साथ जब अपनी बीवी को देखते हैं या बीवी अपने शौहर को देखती है, अपनी औलाद को देखते हैं इन आंखों से, और अल्लाह का शुक्र अदा की फीलिंग होती है हमारे दिल के अंदर, तो एंट्री पॉइंट कहाँ से हो रही है? ये चीज एंट्री पॉइंट हमारी फिजिकल आंखों से हो रही है, लेकिन एंटर होके कि ये जा किधर रही है, ये कोई हमारे स्टमक में तो नहीं जा रही कि स्टमक में जाकर के जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से जो है उसको डाइजेस्ट किया जाएगा, राइट? ये हमारे खून का हिस्सा तो नहीं बन रही, राइट? बल्कि ये किस चीज का हिस्सा बन रही है? ये हमारी रूह का हिस्सा बन रही है। हमारी रूह को इन चीजों को देखने से तफरीत मिल रही है, काबतुल्लाह को देखने से, कुरान को देखने से, राइट? तो एंट्री पॉइंट अल्लाह ताला ने क्या बनाया है? एंट्री पॉइंट अल्लाह ताला ने फिजिकल बॉडी बनाई है। लेकिन फिजिकल बॉडी से जब ये चीजें एंटर हो जाती है ना, तो फिर ये हमारी रूह के अंदर चली जाती है, ठीक है, और उससे रूह को फायदा होना शुरू हो जाता है। लेकिन नबी अलैहि सलाम फरमा रहे हैं कि ये लोग जब कुरान पढ़ेंगे, जो कि इस अंदाज में कुरान पढ़ेंगे जिस अंदाज में अल्लाह ने कुरान को नाजिल नहीं किया था, तो इनकी जो ये यानी जो जो रूहानी फायदा मिलना चाहिए था ना, ये रूहानी फायदा इनके हलक से ज्यादा आगे नहीं पहुंच सकेगा, ठीक है, यानी इनकी रूहों के अंदर ये शामिल नहीं हो सकेगा, रूहों के अंदर हलूल नहीं हो सकेगा, रूहों को तकवियत नहीं पहुंचा सकेगा। हालांकि पढ़ वो अल्लाह का कुरान ही रहे होंगे, लेकिन इनकी रूहों को कोई फायदा नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो ला युजावजु हनाजरहुम मफ्तूनतुन कुलूबहुम, मफ्तूनतुन का लफ्ज क्या है? फितना, ठीक है, फितने का मतलब आपको बता चुके हैं, आजमाइश को भी फितना कहते हैं, और जब बहुत ज्यादा फसाद हो जाता है ना, तो वो बहुत ज्यादा फसाद जो है वो बहुत बड़ा फितना बन जाता है, बहुत बड़ी आजमाइश बन जाती है, ठीक है। तो जो शख्स फितना प्रोड्यूस करता है, क्रिएट करता है फितना, उसको क्या कहेंगे? इस्म फाइल का सीगा उसके लिए इस्तेमाल करेंगे, फातिनुन, राइट, फातिनुन यानी फितना क्रिएट करने वाला, फाइलुन के वजन पर। और जो फितने में मुब्तला हो जाता है, ठीक है, उसके लिए इस्म मफूल का सीगा इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए इस्म मफूल का सीगा क्या होता है? मफूलुन के वजन पर होता है ना, वो तो वो होगा मफतूनुन, ठीक है, यानी जो फितने में गिरफ्तार हुआ उसको कहेंगे मफतूनुन, ठीक है। और मफतूनुन जो है यहाँ पर उसका मोनस जो है वो ताए मरबूता आखिर में लगा दी गई, तो वो मफतूनतुन बन गया, ठीक है। क्योंकि मफतूनतुन यहाँ पे क्यों बनाया, मफतूनुन क्यों नहीं रखा? इसलिए कि कुलूब की बात हो रही है, ठीक है, कुलूब का जो लफ्ज है ये मोनस इस्तेमाल होता है, ठीक है, इस वजह से मफतूनतुन इस्तेमाल किया गया, मफतूनुन इस्तेमाल नहीं किया गया। तो मफतूनतुन कुलूबहुम यानी उनके कुलूब फितने में मुब्तला हो जाएंगे इन आवाजों को सुन करके, यानी ये जो कुरान पढ़ रहे होंगे ना इस अंदाज में, ये यानी गाने वाले और नौहा करने वाले के अंदाज में जो कुरान पढ़ा जा रहा होगा, ये कुरान जो है वो उनके सुनने वालों के कुलूब को फितने में मुब्तला कर देगा। रूहानी फायदा पहुंचाना तो दूर की बात, ये उल्टा नुकसान, रूहानी नुकसान में मुब्तला कर देगा उनको, ठीक है। तो अल्लज़ी किन लोगों को मुब्तला करेगा? कुलूबहुम व कुलूबुल लदीना, ये अच्छा ये तो पढ़ने वालों के कुलूब हो गए ना, कि जो के पढ़ रहे हैं, कुलूबहुम से मुराद यहाँ पर जो है वो उन लोगों के कुलूब जो के इस अंदाज में पढ़ेंगे, ठीक है, और जो इसको सुनेंगे, ठीक है, उनका क्या मामला है? उनका मामला आगे आ रहा है, वह कुलूबुल लदीना और कुलूब उन लोगों के जो, अल्लदीना का तर्जुमा होता है वो लोग जो, तो कुलूब उन लोगों के जो युजिबहुम शानहुम, जो के ताज्जुब में मुब्तला हो गए, यानी यहाँ पे ताज्जुब से मुराद जो है वो हैरानगी नहीं है, बल्कि ताज्जुब से मुराद जो है वो अच्छा लगना है, ठीक है, पसंद करना है, ठीक है, कि जो लोग इनकी किरात को सुनकर के खुश होंगे ना, वाह वाह करेंगे इनकी किरात को सुनकर के, और इनकी जो शानहुम, शान जो होता है ये वही लफ्ज है शान, जो कि उर्दू में भी हम कहते हैं ना जी, किस शान से इसने ये बात करी है, ठीक है, यानी इसकी क्या शान है, ठीक है। तो ये जो शान का लफ्ज उर्दू में आया ये अरबी के ही शान से आया, ठीक है, जैसे कि सूरह रहमान की आयत है, कुल्ल यौमिन हुआ फी शान, राइट, अर रहमान अल्लम अल कुरान, आगे जाके आता है कुल्ल यौमिन हुआ फी शान, कि हर दिन उसकी एक नई शान होती है, राइट, हर दिन अल्लाह ताला की एक नई खूबसूरती होती है, एक नया रंग होता है अल्लाह ताला का, राइट, और वो हर दिन तब्दील करके एक नए खूबसूरती में तब्दील होता है, ठीक है। तो कुल्ल यौमिन हुआ फी शान, तो शान से मुराद वही होता है कि उनकी जो शान है या उनका जो हाल है, ठीक है। तो युजिज़ुहुम शानुहुम का मतलब किया कि उन पढ़ने वालों की जो शान है ना, यानी उन पढ़ने वालों का जो हाल है वो इन सुनने वालों को ताज्जुब में मुब्तला करता है, राइट, ताज्जुब में मुब्तला करता है। तो ये लोग जो कि ताज्जुब में मुब्तला हो जाएंगे उनके कुलूब भी मफ्तूनतुन होंगे, राइट, उनके कुलूब भी फितने में मुब्तला होंगे। ठीक है, तो चले लफ्जी तहकीक के साथ ही तकरीबन तशरीह भी हो गई, लेकिन फिर भी हम इस जो लिखी हुई तशरीह है उसको पढ़ लेते हैं। इक़्रा कुरान बिलुहून अरबी, कि कुरान अरबों की जुबान और लहजे में नाजिल हुआ है। जैसे कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं अनज़लनाहु कुरआनन अरबिया, के जब कुरान पढ़ेंगे, अच्छा हमने नाजिल किया कुरान को अरबी जुबान के अंदर, तो जब कुरान पढ़ेंगे तो बगैर तकल्लुफ पढ़ें, यानी तकल्लुफ ना करें कि जी खास तौर पर जो है वो गाने वालों के अंदाज में पढ़े हैं या रोने वालों के अंदाज में पढ़े, इस तरह का तकल्लुफ ना करें, तकलीफ में ना डालें अपने आप को। जैसे आपको कारी साहब ने सिखाया है, उलमा ने सिखाया है, वैसे ही कुरान पढ़े बस। तो इसमें तंबीह है उन लोगों के लिए जो कुरान पढ़ने में ख्वाह मखा का तकल्लुफ करके अपनी आवाज और लहजे को बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। अब इसका मतलब हरगिज यह नहीं है कि जो लुहूल अरब के मुताबिक अपनी किरात को अच्छा करते हैं ना तो वो भी इसमें शामिल है, वो इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो वो तो लुहूल अरब के मुताबिक कुरान पढ़ रहे हैं तो उनको कोई थोड़ी इस वईद का हिस्सा बनाया जाएगा, बल्कि उनके लिए तो बशारते हैं उन लोगों के लिए जो कि कुरान को अच्छी आवाज में पढ़ते हैं। ठीक है, नबी अलैहि सलाम जो है वो खास उन सहाबा को जो कि अच्छी आवाज में कुरान पढ़ते थे, खास कुरान पढ़ने के लिए फरमाया करते थे। ठीक है, और हत्ता के वो कौन थे सहाबी, हजरत के अल्लाह ताला की तरफ से नबी अलैहि सलाम को फरमाया गया था कि इनसे कहें कि आप कुरान पढ़ें, मैं भी सुनूंगा आप भी सुनिएगा। ठीक है, तो उन सहाबी को अल्लाह ताला ने यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अल्लाह ताला के पैगाम पहुंचाया कि अल्लाह ताला की तरफ से फरमाइश आई है कि आप कुरान पढ़ के सुनाएं। ठीक है, इयाकुम वलुहून अहले इश्की, कि तुम बचो अहले इश्क की तरह पढ़ने से, यानी जिस तरह अहले इश्क और शुअरा अपने अशआर और नज़्मों को खूब बना बना कर तरन्नुम की आवाज में पढ़ते हैं, मजीद ये के साथ साथ मौसीकी और राग वगैरह को भी शामिल करते हैं, तुम कुरान को इन सब चीजों से दूर रखो। तो शायद ये जमाना आ चुका है या आने वाला है, अल्लाह आलम, के कुरान के साथ ऐसा भी किया जाएगा। अहलुल किताबैन, यानी जिस तरह अहले किताब यहूदी व यहूद व नसारा की आदत ये थी कि वो अपनी किताब को गलत लिखते और गलत पढ़ते और गलत इसकी तशरी और मतलब बयान करते थे, मुसलमानों को नसीहत है कि तुम अपनी किताब यानी कुरान के साथ ऐसा मामला ना करना। ठीक है, तो कुरान को सही सही पढ़ना, कुरान की हिफाजत करना और कुरान को समझना, ये सब कुरान की यानी कुरान की खिदमतें हैं, और जिसको जितनी अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं उनको इतना जो है वो कुरान की खिदमत के अंदर लगना चाहिए, ताकि यानी कुरान जो है वो हर लिहाज से आवाज़ जिस तरह पढ़ने का तरीका है उसको भी हम महफूज कर सकें, जैसे उसके अल्फाज हैं उसको भी हम महफूज कर सकें और जैसे उसके मानी हैं उनको भी हम महफूज कर सकें। कुरान के अंदर ये सारी चीज़ें हिफाजत करने की हैं और अल्लाह ताला हमें इस्तेमाल फरमाते हैं अपने कुरान की हिफाजत के लिए, तो जो भी इस्तेमाल हो जाए अल्लाह ताला के कुरान की हिफाजत के लिए, चाहे वो कुरान की किरात की हिफाजत हो और चाहे वो कुरान के अल्फाज की हिफाजत हो, चाहे वो कुरान के मानी की हिफाजत हो, तो उसको अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए और उसको अपने ऊपर एहसान समझना चाहिए अल्लाह ताला का, कि अल्लाह ताला ने उसको तौफीक अता फरमाई, और अगर खुद को तौफीक नहीं हो रही है इनमें से किसी भी चीज के अंदर आगे बढ़ने की, तो कम अज कम उन लोगों को अल्लाह ताला के खुसूसी बंदे समझना चाहिए कि जिनको अल्लाह ताला ने तौफीक दी है। ठीक है, यानी या तो खुद आलिम बन जाओ, या अगर आलिम नहीं बन सकते तो उलमा से मोहब्बत करने वाले तो बनो। ठीक है, कि भाई इन उलमा को अल्लाह ताला ने अपने कुरानी उलूम की, कुरान के अल्फाज की, कुरान के किराअत की हिफाजत करने के लिए पसंद फरमाया है। मुझे पसंद नहीं किया, मुझे अल्लाह ताला ने कंप्यूटर साइंस के लिए पसंद किया, मुझे अल्लाह ताला ने जो है वो डॉक्टरी के लिए पसंद किया, मुझे दूसरे काम के लिए पसंद किया, और उनको अल्लाह ताला ने अपनी किताब के लिए पसंद किया, तो भाई क्या फर्क नहीं है इन दोनों चीज़ों के अंदर। आगे फरमाया मफ्तूनतुन कुलूबुहुम, कि उनके दिलों में फितने होंगे क्योंकि वो कुरान को पैसों के लिए या शोहरत हासिल करने के लिए पढ़ेंगे, इखलास का उनमें नामो निशान ना होगा। तो जो लोग इस गलत काम या गलत बात को अच्छा समझेंगे वो भी गुमराही और जलालत में मुब्तला हो जाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर कोई सवाल हो तो जरूर पूछ लीजिए, वरना अल्हम्दुलिल्लाह ये बाब खत्म हुआ। सोच रहा था कि इस ये बाब जरा यानी एक लिमिटेड नंबर ऑफ अहदीस थी इसके अंदर, तो आगे बढ़ने से पहले हम एक क्विक जो है वो इसका ओवरव्यू कर लें या समरी कर लें, क्योंकि चीज़ें हम पढ़ रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं, जाहिर है ये सिस्टम जो है वो दूसरी नियत के साथ शुरू किया हुआ है, इसके अंदर कोई इम्तिहानों का सिस्टम नहीं है, इसके अंदर जो है वो बाकायदा आपको सनद देना, आलिम कोर्स करना, ये सारी चीज़ें तो इसके अंदर है नहीं। ये तो एक ऐसा गोया के यानी एक एक समझ लें कि बयान का सिस्टम है ये, कि ताकि हमें साल के अंदर यानी हफ्ते के अंदर जो है सिर्फ वो जो जुमे के अंदर एक दफ़ा बयान होता है जो कि यूजली वन वे ही होता है, ठीक है, बिकॉज वो उस किस्म की मजलिस होती है कि जिसके अंदर इंटरेक्शन का कोई कोई नहीं होता, मौका नहीं होता, अनलेस के कोई बाहर यानी बयान खत्म होने के बाद भी बैठे और फिर वो सवाल करे तो वो और बात होती है, लेकिन बयान के दौरान सवाल जवाब का सिस्टम नहीं होता, ठीक है, और उसके अंदर जो है वो फिका हम डिस्कस नहीं करते, उसके अंदर हम जो है वो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डिस्कस नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से हफ्ते के अंदर 3 घंटे में रखे हैं कि इसके अंदर इंटरेक्टिवली इन अ क्लासरूम फैशन जो है ना वो हम दीन के की जो बातें हैं वो शेयर करते हैं एज अ रिमाइंडर भी और एज अ यानी नॉलेज के तौर पर भी, ठीक है। तो इस वजह से हम इसमें यानी एग्जाम्स का और बाकायदा फॉर्मल क्विजेस का वगैरह सिलसिला तो नहीं है, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि भाई बस आगे ही पढ़ते जाएं पीछे जाए बिल्कुल भी यानी हर चीज़ ही भूलते चले जाएँ, तो इस वजह से जहाँ मुमकिन होगा तो वहाँ पीछे का भी थोड़ा सा रिव्यू कर लेंगे। तो ये जो इस नीयत के साथ ये जो बाब था तो इसके अंदर सबसे पहले जो हमने हदीस पढ़ी थी उसका उसकी समरी ये थी कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यानी एक जमात जो है वो हमेशा हक पर कयामत तक जमी रहेगी। एक मिनट, एक सवाल किसी ने भेजा है कि व्हाट इज द एग्जांपल इफ एनी इन टुडेज एज विद रेफरेंस टू अबव हदीस। Actually, I don't know if there is an example in today's age, because yani वैसे बहुत सारे माशाल्लाह अच्छे अच्छे कारी हैं, सऊदी अरब के अंदर भी हैं, इजिप्ट के कारी जो हैं वो सबसे ज़्यादा मशहूर हैं, ठीक है, और दूसरे इलाकों के भी हैं, लेकिन ये जो हदीस है ना ये स्पेसिफिकली बात कर रही है अरबों के लहजे से हट करके तिलावत करना, ठीक है, ये हदीस ये बात नहीं कर रही कि वो तिलावत करेंगे और उस कुरान यानी कुरान पढ़ेंगे लेकिन कुरान पर अमल नहीं करेंगे, ठीक है, ये इस हदीस का सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से हम आज के दौर में ये तो बहुत सारे यकीनन केसेस, हमारा अपना केस भी ऐसा ही है, ठीक है, दूसरों के ऊपर क्यों तनकीद करें, अपना मामला ये है कि कुरान पढ़ते हैं लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं करते, ठीक है, तो इसको यानी इस हदीस में कम अज़ कम इसका वो मामला नहीं है। अब ये है कि कोई उस लहजे में कुरान पढ़ रहा है तो मुझे तो याद नहीं पड़ता कि मेरा कभी ऐसा किसी के साथ वास्ता पड़ा हो। आजकल टेलीविजन के ऊपर बहुत जो है वो हर किस्म के लोग आना शुरू हो गए हैं और दीनी शक्ल में भी बहुत सारी चीज़ें होना शुरू हो गई, यानी बाकायदा कौन सा आप कह रहे थे कि सुबह को ड्रामा करते हैं और रात को जो है वो सर पर दुपट्टा ओढ़ करके और सर पर टोपी पहन करके जो है दीनी प्रोग्राम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब इस किस्म के प्रोग्राम में अगर इस किस्म की कोई तिलावतें लोगों ने करनी शुरू कर दी हैं या कुरान पढ़ना शुरू कर दिया है तो मुझे इसका नहीं है, ठीक है। तो ये पहली हदीस थी, इस हदीस से हमें ये बात पता लगती है कि जब तक ईमान वाले इस दुनिया में रहेंगे, ठीक है, एक तो वक्त आएगा ना कि ईमान वाले खत्म हो जाएंगे दुनिया से, एक भी ईमान वाला नहीं रहेगा, ठीक है, लेकिन उससे पहले जब तक ईमान वाले दुनिया में रहेंगे तो हमेशा उनके अंदर एक जमात हक के ऊपर जमी रहेगी, ठीक है। तो इस वजह से हमें इस तरह की बदगुमानी में मुब्तला नहीं होना चाहिए या इस तरह की बातें नहीं कहना चाहिए कि आज तो सभी खराब हो चुका है, ठीक है, आजकल तो कोई भी नहीं बचा कि जिससे जा करके हम दीन सीख सकें या दीन के ऊपर जिनके साथ मिल करके अमल कर सकें, तो ऐसी बातें जो है वो इस हदीस के खिलाफ हो जाएंगी, इस वजह से इससे बचना चाहिए। इसके बाद अगली थी कि कुर्ब क़यामत के झूठे और मकार लोग, तो कुर्ब क़यामत जब होगी तो उस वक्त जो है वो झूठ और मकर जो है दजल फरेब जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जैसे कि इस हदीस के अंदर दज्जालून का जबून का जिक्र भी आया, तो दजल फरेब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और अल्टीमेटली जब ये यानी बिल्कुल यानी कुफर और हक का फाइनल मार का होगा तो उस वक्त जो है वो इस दजल और फरेब के जो जो अल्टीमेट हाइट والی مخلوق ہے جس کو کہ المسیح الدجال کا نام دیا گیا, تو وہ پھر اس وقت آئے گا, لیکن وہ آ کر کے پھر زیادہ عرصہ نہیں رہے گا اس دنیا کے اندر. 40 دن حدیث میں آیا کہ وہ 40 دن ہی رہے گا, ٹھیک ہے. لیکن اس سے پہلے جو ہے نا وہ دجل و فریب جو ہے وہ بہت ساری شکلوں کے اندر اس دنیا کے اندر یعنی قائم ہو چکا ہوگا, اور حالات جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو جائیں گے. یعنی صحیح اور غلط میں فرق کرنا جو ہے وہ انتہائی درجے کا مشکل کام بن جائے گا. تو اس حدیث نے جو ہے وہ یعنی دوسری سائڈ آف دا پکچر بھی دکھا دی. پہلی حدیث نے تو وہ والی سائڈ آف دا پکچر دکھائی تھی کہ حق ہمیشہ رہے گا, اور اس حدیث نے بتایا کہ دجل اور فریب جو ہے وہ بھی انتہا درجے کو پہنچ جائے گا. ایسی ایسی باتیں تمہیں بتائی جائیں گی جو تم نے کبھی نہ سنی ہوں گی, یا تمہارے باپ دادا نے کبھی نہ سنی ہوں گی, تم ان سے بھی بچو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے بارے میں ہمیں وارننگز دے دی تاکہ ایمان والوں کے لیے, ٹھیک ہے. کیونکہ ایمان والوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ حدیثوں کو پڑھتے ہیں, قرآن کو پڑھتے ہیں, اور ان کے اندر جو وارننگز آئی ہیں نا تو ان وارننگز کو سیریسلی لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ خاصیت ہی ایمان والوں کی ہوتی ہے, اور جو ایمان والے نہیں ہوتے ہیں تو وہ تو ان وارننگز کو سیریسلی لیتے ہی نہیں ہے. تو پھر جب وہ ان وارننگز کو جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں دے دیے ہیں وہ سیریسلی لیں گے ہی نہیں, تو پھر وہ تو ان یعنی ان فریبوں کا شکار ہو جائیں گے نا. لیکن جو لوگ ان چیزوں کو سیریسلی لیں گے, ٹھیک ہے, تو ان کے لیے امید یہی ہے کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ ان کو ان فتنوں کے اندر پڑھنے سے محفوظ رکھیں گے. تو اتنا زیادہ پریشان اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بس زیادہ ذرا ویجلنٹ اور ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. آگے فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگ جھوٹی قسم کھانے میں ایک دوسرے سے سبقت کریں گے. تو یعنی قیامت کا خوف جو ہے, آخرت کا خوف یا آخرت کی فکر جو ہے وہ اتنی کم ہو جائے گی کہ اتنے بڑے بڑے گناہ جو کہ یعنی گناہ کبائر میں بھی جو ہے وہ بڑے اونچے درجے کا گناہ ہے جھوٹی قسم کھانا, ٹھیک ہے, تو اس کو بھی یعنی اس میں بھی جو ہے وہ یعنی احتیاط نہیں کریں گے, اور اپنے اوپر گناہوں کے انبار لاد لیں گے اور کوئی فکر نہیں ہوگی. تو گناہ جو ہے وہ اتنا زیادہ کثرت کے ساتھ بڑھ جائے گا دنیا کے اندر. اس کے بعد حدیث تھی کہ جس کا موضوع تھا قیامت کے قریب ہر شخص کو سود کا دھواں پہنچے گا. تو سود کے بارے میں بہت ساری وعیدیں آئی ہیں قرآن کے اندر کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہوتا ہے, یا یہ کہ جو شخص جو ہے وہ سود کے اندر مبتلا ہوتا ہے یا اس کا ادنا درجہ, وہ کعبۃ اللہ کے سائے میں اپنی ماں سے 70 مرتبہ زنا کرنے کی مترادف ہے وہ, ٹھیک ہے. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں سود میں مبتلا ہوگا, چاہے وہ خود نہ بھی سود کھا رہا ہو, خود سود نہ بھی دے رہا ہو, لیکن اس کا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑے گا جو کہ سود کے اندر گرفتار ہیں, اور وہ ان لوگوں کے گھر میں جا کر کے ان کا کھانا بھی کھائے گا, ان کا ہدیہ بھی لے لے گا, ٹھیک ہے. اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون کیا کر رہا ہے. تو جان یعنی بچنے کی ہر ممکن کوشش کے باوجود جو ہے وہ سود میں کسی نہ کسی طریقے سے یعنی غبار کی حد تک کم از کم جو ہے نا, یعنی دھواں کی حد تک جو ہے وہ کم از کم سود ہر شخص کو پہنچے گا. اس کے بعد تھا کہ دین دوبارہ اجنبی ہو جائے گا. تو اس کا یعنی یہ ہم نے مفہوم ڈسکس کیا تھا کہ جیسے کہ یہ دین شروع ہوا تھا, اس حدیث مبارکہ کا مفہوم کیا بنتا تھا کہ جیسے یہ دین شروع ہوا تھا نا, غریب کا مطلب تھا کہ بالکل اسٹرینج, ٹھیک ہے, یہاں پر غریب سے مراد اسٹرینج ہے, تو وہ ویسے ہی لوٹے گا جیسے کہ وہ شروع ہوا تھا. سیعود کما بدا, ٹھیک ہے, تو وہ غریب ہی حالت میں لوٹ جائے گا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اس اسٹرینج دین کے اوپر عمل کرنے والے لوگ ہوں گے نا, تو وہ ظاہر اسٹرینجرز ہی کہلائیں گے دوسروں کے مقابلے میں. تو ان لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا پھر امت کے فساد کے دور میں میری سنتوں کو زندہ کریں گے, تو ان کے لیے بہت زیادہ خوشخبری ہے. اچھا, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگلی حدیث تھی, اصلاح کرنے والے قیامت تک رہیں گے. تو یہ بھی ایک خوشائند بات ہے کہ ہمارے لیے بھی راستے جو ہے وہ بند نہیں ہو گئے. اگر ہم اپنے آپ کو ایسے لوگوں میں شامل کر لیں تو ہم بھی اس بشارت کے مستحق بن سکتے ہیں آج کے دور کے اندر بھی, کہ جس میں نے فرمایا کہ یعنی وہ لوگ جو ہیں یعنی نیک لوگ اس علم کو حاصل کریں گے جو دین کا علم ہوگا, اور وہ لوگ جو ہیں پھر حد سے گزر جانے والوں کی تحریفوں کو اور باطل کاروں کی اختراع پردازیوں کو اور جاہلوں کی غلط تعویلات کو دور کریں گے. تو اس حدیث کے ایکسپلینیشن کے تحت پھر ہم نے تعویلات کے بارے میں ڈسکس کیا تھا, और किस किस किस्म की तावीलात हो सकती हैं, जिनमें से कि दो किस्में जो होती हैं वो बातिल होती हैं। पहली किस्म तो बिल्कुल कुफर होती है, दूसरी किस्म जो होती है वो फिस्क और गुनाह होती है, और तीसरी किस्म जो तावील की होती है वो अच्छी तावील होती है, जो कि उलमाए कराम करते हैं, ठीक है। और यही उनका काम भी है करना कि कुरान और हदीस की बातों से की अच्छी सही तावीलात करें, ताकि इंसान जो जिस दौर के इंसान हैं वो हर दौर के अंदर इंसान जो है वो कुरान और हदीस से अपनी जिंदगियों के लिए हिदायत हासिल कर सकें। अगर तावील के इस सिलसिले को बंद कर दिया जाए तो फिर कुरान जो है वो सिर्फ एक स्टोरी बुक बन करके रह जाएगा हमारे लिए, ठीक है, और हम अपनी जिंदगी में उसको अप्लाई नहीं कर सकेंगे। इसी वजह से उलमाए कराम जो है वो शरीय उसूलों के तहत जो है वो सही तावीलात पेश करते हैं अवामुन नास के सामने, ताकि अवामुन नास जो है वो हिदायत हासिल कर सकें। इसके बाद थी कि कातिल और मक्तूल दोनों जहन्नुम में जाएंगे, तो हरज के बारे में फरमाया था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि इतना ज्यादा कत्ल आम हो जाएगा कि यानी यानी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें ख्वातीन की तरफ से सवाल, इसलिए कि ख्वातीन में भी यही हदीसें चल रही हैं, तो वहां से सवाल आया था कि इस हरज का क्या मतलब है, और कातिल और मक्तूल जो है वो दोनों जहन्नुम में जाएंगे, तो इससे यानी उनके समझ में नहीं आ रही थी बात कि अगर हरज का तर्जुमा कतरे आम से किया जाए, जैसे कि यहाँ पर किया है कतरे आम, ठीक है, तो कतरे आम तो जैसे सीरिया में भी हो रहा है, ठीक है, कतरे आम जो है वो बर्मा में भी हुआ, कतरे आम जो है वो बॉस्निया कोसोवो में भी हुआ, ठीक है, तो अगर कातिल और मकतूल दोनों, ठीक है ना, यानी सवाल उनका बड़ा मासूम मासूमाना था, लेकिन था बड़ा जेन्युइन सवाल, ठीक है, कि भाई अगर हरज जो है वो कत्ले आम है, तो इस हदीस के मुताबिक तो उस कत्ले आम के अंदर कातिल भी जहन्नुम में जाएगा और मकतूल भी जहन्नुम में जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने मजलूम जो है वो सीरिया में मर रहे हैं या बर्मा में मर रहे हैं या बोस्निया में मर रहे हैं, वो सारे के सारे भी जहन्नुम में जाएंगे इस हदीस के मुताबिक, ठीक है। तो उसके ऊपर फिर उनको समझाना पड़ा था कि नहीं, यहाँ पर कत्ले आम मुराद नहीं है, ठीक है, कत्ले आम इज उर्दू का एक टर्म है, और उर्दू में कत्ले आम से मुराद जो है वो एक डिफरेंट चीज दी जाती है। यहाँ पर मामला ये ऐसा है कि यानी जिसमें होता है ना कि यानी दोनों पार्टीज जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ दस्त, या क्या कहते हैं, दस्त बगरेबां होंगी, ठीक है, और दोनों जो है वो एक दूसरे को मारने के पतुली भी होंगी, दोनों के पास यानी कि इतनी स्ट्रेंथ होगी कि वो एक दूसरे को मार सके, ठीक है, लेकिन जाहिर है वार तो किसी एक ही का चलेगा ना, कि इसका वार चला तो वो मर गया या उसका वार चला तो ये मर गया, ठीक है, लेकिन पक्का इरादा भी दोनों का था और दोनों ने जो है वो काम भी शुरू कर दिया था इसके लिए, ठीक है। अब जो है वो बाय चांस जिसका वार चल गया तो वो कातिल बन गया, और बाय चांस या बाय तकदीर जिसको कहना चाहिए, ठीक है, बाय तकदीर जिसका वार नहीं चला तो वो मकतूल हो गया, ठीक है, लेकिन ही वॉज अबाउट टू किल द कातिल एज वेल, ठीक है, तो उसको इस तरीके से देखना पड़ेगा। उर्दू के वो कत्ले आम के लफ्ज़ से ना ये हरज का जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में नहीं आता। अच्छा, अगली हदीस में ये था कि कयामत के करीब इल्म उठा लिया जाएगा और फितने फैल जाएंगे, ठीक है, तो ये कल भी हमने इस हदीस के बारे में यानी इसी जैसी एक और हदीस पढ़ी थी कि यानी इल्म के उठा लेने का मतलब क्या है, और फितने जाहिर होंगे जब कि हरज ज्यादा होगा, फितने ज्यादा होंगे, और बुखल जो है वो इंसानों के दिलों में डाल दिया जाएगा वगैरह, तो ये भी आखिरी जमाने के जो बड़े बड़े फितने हैं उनके मुताबिक हदीस थी। कयामत के करीब आदमी तमन्ना करेगा कि काश मैं कब्र वाले की जगह होता, ठीक है, तो इसके बारे में बात करी थी कि इतना ज्यादा यानी लड़ाइयाँ जंगें जो है वो बढ़ चुकी होंगी कि किसी इंसान के सारे घर वाले जब दुनिया से चले जाएंगे तो उसकी भी तमन्ना ये होगी कि काश मैं भी उन्हीं के साथ जाके मिल लूँ, ठीक है, या ये कि वो जो जिंदगी उसकी रह गई होगी वो इतनी ज्यादा परेशान और दुख वाली जिंदगी होगी कि वो कब्र में जाना पसंद करेगा इस दुनिया में रहने के मुकाबले में, ठीक है। तो जैसे कि हदीस से भी हमें हालात पता लगते हैं कि ऐसा भी जमाना आने वाला है कि जब पूरी दुनिया के अंदर जो है यानी एक वर्ल्ड वॉर की वाली सिचुएशन होगी, तो या तो ये उसी वक्त की बात है या ये कि जो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ कम्युनिटीज में जगहों में इस किस्म के हालात ऑलरेडी आ चुके हैं, तो वहां पर भी लोगों का हाल यही हो सकता है। कयामत के करीब सिर्फ इस्लाम का नाम बाकी रह जाएगा, तो इस्लाम में सिर्फ इसका नाम बाकी रह जाएगा, कुरान के नकूश बाकी रह जाएंगे, मस्जिदें भी होंगी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी खूबसूरत बनाई भी होंगी, लेकिन वो हिदायत से खाली होंगी, लेकिन यानी उनके अंदर जो लोग होंगे उनके दिल हिदायत से खाली होंगे, उनके अंदर जो है वो हिदायत की बातें नहीं हो रही होंगी, बस एक फॉर्मेलिटी पूरी हो रही होगी, उससे ज्यादा नहीं होगा। और उस जमाने में जो उलमा होंगे वो आसमान के नीचे की मखलूक में सबसे बदतर होंगे, इसलिए कि उलमा का काम होता है गाइड करना। और जब उलमा जो है वो दुनिया परस्ती का शिकार हो जाएं, तो फिर वो अवाम उन्नास को बुराई की तरफ ही गाइड करते हैं, नफ्स परस्ती की तरफ गाइड करते हैं। और जाहिर है कि अवाम उन्नास जो है ना, ये एक ह्यूमन नेचर है, ठीक है। कल जैसे कि बात हो रही थी ना कि अवाम जो है वो उलमा से यानी इस्तगना क्यों बरतेंगे, ठीक है, उलमा यानी अवाम उलमा से इस्तगना क्यों बरतेंगे, तो उसमें आप लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे जवाब दिए थे, ठीक है, कि अपने आप को आलिम समझेंगे, ठीक है। तो इस वजह से चूंकि अपने आप को आलिम समझ रहे हैं, तो फिर उलमा की तरफ रुजू करने की जरूरत ही महसूस नहीं करेंगे, ठीक है। और एक जवाब ये भी था जैसे कि शायद के किताबों से इल्म हासिल करेंगे या इंटरनेट से इल्म हासिल करेंगे, ठीक है। तो इल्म के मोहताज तो अपने आप को समझेंगे, लेकिन किताबों से इल्म हासिल करेंगे और इंटरनेट वगैरह से, शेयर गूगल साहब से इल्म हासिल करेंगे वगैरह, राइट, तो फिर उलमा की तरफ जाने की जरूरत महसूस नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं कहना क्या हुआ, तो उलमा की जो अच्छा हाँ, मैं ये कहने वाला था कि लेकिन फिर भी जो वैस्ट मेजोरिटी ऑफ द पीपल होती है ना, वैस्ट मेजोरिटी ऑफ द पीपल, ठीक है, इंसानों की जो वैस्ट मेजोरिटी होती है वो हमेशा से, वो जो अपने से ज्यादा इन वालों को देखते हैं ना, तो वो उन्हीं से पूछते हैं, ठीक है।
के
चाहिए, मैं तो नहीं अभी लगभग बहन जाए यहाँ तो वो भी है यहाँ पे। अच्छा, तो उलमा यानी अवाम जो है ना, वो हमेशा जो है वो उलमा से ही पूछ करके चलते हैं, ठीक है। ये यानी एक अल्लाह ताला ने एक ह्यूमन नेचर बनाई है, ठीक है। अब मसला ये होता है कि पूछना तो उलमा से ही है, ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है कि किस किन उलमा से पूछेंगे, ठीक है। बिकॉज उलमा की दो कैटेगरीज कल हमने डिस्कस करी थी ना, उलमाए हक और उलमाए सू, ठीक है। अब अवाम के सामने ये चॉइस होती है कि वो उलमाए हक से पूछें कि उलमाए सू से पूछें, ठीक है। पूछना तो उन्होंने उलमा से ही होता है, ठीक है। जैसे आप अपने अपने मुल्कों में, अपने इलाकों में देखें जा करके, जी वो तो क्लास कर रही है, नहीं यहाँ पे तो नहीं, आप ही से पूछो, आप ही से पूछो। अच्छा, मैं कह रहा था बेटा अभी नहीं, थोड़ी सी 10 मिनट बाद
अच्छा
उन्होंने लिखा है, ये बैंक पता नहीं कहाँ पर है। क्लास के बाद, हाँ क्लास के बाद अब निकल, ठीक है, क्लास खत्म होने दें, उसके बाद अब। तो वास्ट मेजोरिटी ऑफ यानी जो लोग होते हैं ना, तो उन्होंने उलमा से ही पूछना होता है, ठीक है, ये अल्लाह ताला ने नेचर बनाई है, लेकिन उनके पास हमेशा ये चॉइस होती है कि उलमाए हक से पूछना है कि उलमाए सू से पूछना है। तो अगर आप अपने अपने मुआशरों में देखें, अपने मुल्कों में देखें कि जो अवाम की ज्यादा बड़ी तादाद होती है ना, वो उन्होंने किन लोगों को अपना पेशवा बनाया हुआ होता है, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली आपके सामने ये सिचुएशन आएगी कि उन्होंने जो अहले बिदत उलमा होते हैं ना, उनको अपना पेशवा बनाया होता है, ठीक है। और जो अहले हक उलमा होते हैं, जो कि बिदतों के, शिर्क के, उनके खिलाफ होते हैं, तो उनके जो फॉलोअर्स होते हैं ना, वो हमेशा कम ही होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जब उलमाए हक की डिमांड कम हो जाती है, तो उलमाए हक को अल्लाह ताला हटा लेते हैं, लेकिन उलमाए सू की डिमांड तो है ना, उलमाए सू की डिमांड तो हमेशा रहती है अनफॉर्चुनेटली अवाम उन्नास के अंदर, क्योंकि अवाम उन्नास के अंदर दुनिया की मोहब्बत इतनी ज्यादा जड़ पकड़ चुकी होती है कि वो उलमाए सू ही को फॉलो करना चाहते हैं, उलमाए हक को नहीं फॉलो करना चाहते। तो इस के तहत भी उन्हीं उलमाए सू की बात हो रही है कि वो जो उलमा होंगे उस जमाने में, वो बदतरीन मखलूक हो गए, क्योंकि वो खाली अकेले गुमराह नहीं हो रहे होंगे, बल्कि वो अपने साथ हजारों लोगों को लेकर के गुमराह हो रहे होंगे। और जाहिर है जिस हमारे दीन का उसूल क्या है कि जो शख्स किसी को बुराई के रास्ते के ऊपर डालता है, तो उस शख्स के जितने गुनाह होते हैं, वो इस बुराई के रास्ते पर डालने वाले के भी इनाम अमाल के अंदर लिखे जाते हैं। तो जाहिर है जब सबके गुनाह, हजारों लोगों के गुनाह जो है वो आलिम के नाम अमाल के अंदर शामिल हो रहे होंगे, तो फिर वो तो दुनिया का सबसे बदतरीन इंसान बन ही जाएगा ना, बिल्कुल इसी तरह। जिस तरह की दूसरी तरफ जब वो हजारों लोगों को गाइड करने वाले उलमा होते हैं सही रास्ते के ऊपर, तो उन सारे लोगों के जो नेक अमाल होते हैं, जो कि इनकी गाइडेंस की वजह से उन्होंने किए होते हैं, तो उन सबका सवाब صاحب جو ہوتے ہیں وہ ان کو عالم صاحب کے نام اعمال کے اندر ڈالا جا رہا ہوتا ہے. اسی وجہ سے عالم صاحب کو جو جنت میں مقام ملے گا نا, عوام الناس اس کی گردوں کو بھی نہیں پا سکتے, ٹھیک ہے نا, اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے. اس لیے کہ عوام جتنی بھی نیک اعمال کر لے, اس کے نیک اعمال جو ہیں وہ اس کے ذاتی نیک اعمال ہی ہوں گے, ٹھیک ہے. زیادہ سے زیادہ اس نے شاید اپنی اولاد میں سے کسی ایک دو کو یا چند جتنی اولادیں ہیں ان کو اگر نیکی کے راستے پہ ڈال دیا تو وہ اولادیں اس کے لیے صدقہ جاریہ بن گئی, ٹھیک ہے, زیادہ سے زیادہ. لیکن عالم کے لیے صدقہ جاریہ تو جتنے لوگوں کو اس نے پڑھایا, جتنے لوگوں کو اس نے سکھایا, جتنے لوگوں کو اس نے کی اس نے غلطیوں کی اصلاح کری, سب کے نام اعمال کا سم ٹوٹل اس کو مل رہا ہے نا, تو ہم تو امیجن نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, کہ عالم کا کیا مقام ہے جنت کے اندر. خیر آگے چلیں گے, قیامت کے قریب لالچ اور خوف ہوگا کہ ایسی قوم ہوں گی جو بظاہر آپس میں دوست بنیں گی لیکن باطن میں دشمنی کریں گی. اور حقیقت یہی ہے کہ کفار جو ہے نا, کافر لوگ, وہ جتنے ہی متحد نظر آئیں, ٹھیک ہے, مسلمانوں کے خلاف, نیکوں کے خلاف, جتنے ہی متحد نظر آئیں, یہ کافر ہوں یا فاسق و فاجر ہوں, ٹھیک ہے, دنیا پرست مسلمان ہوں, ٹھیک ہے, وہ جتنے ہی ان کے نا آپ کو ان کی صفوں میں اتحاد نظر آئے, حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل ایک دوسرے کے خلاف سخت دشمنی میں مبتلا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اوپر اوپر سے آپ کے خلاف اکٹھے ہو گئے ہوتے ہیں, لیکن ذرا ان کو اگر آپ اس دنیا سے چلے جائیں نا, اگر آپ کو ختم کر دیا جائے اس دنیا سے, تو پھر دیکھیں کہ وہ آپس میں کیسے لڑتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ ایک دوسرے کو چھوڑیں گے نہیں, پھر اس کے بعد مار پیٹ کر کے ختم کر دیں گے. وہ تو مسلمانوں کا ان کے اوپر احسان ہے کہ مسلمان ہیں تو وہ آپس میں متحد نظر بھی آتے ہیں, ٹھیک ہے, ورنہ تو ان کے دل آپس میں شدید جو ہے وہ نفرتوں میں مبتلا ہوتے ہیں. آگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا مفہوم تھا کہ قیامت کے قریب صرف بدکار لوگ باقی رہ جائیں گے, تو یہ بدکار لوگ جو ہیں وہ ویسے اس انداز میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ یعنی دجال کے آنے کے وقت جو ہے وہ نیک لوگ بہت کم رہ جائیں گے, یا یہ کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس وقت ایمان والوں کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا تو پھر تو صرف اور صرف کافر ہی رہ جائیں گے, تو انہوں نے تو بدکاری کرنی ہے اور وہ تو انتہا درجے کی بدکاری ہوگی, اور ظاہر ہے ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے سامنے پھر کوئی مقام نہیں ہوگا. جیسے کہ مچھروں کا ہمارے سامنے کوئی مقام ہوتا ہے کہ جی کتنے مچھر آ گئے, کتنے مچھر چلے گئے, کتنے مچھر جو ہے وہ پیدا ہو گئے, کتنے مچھر جو ہے مر گئے, ٹھیک ہے, ہمارے لیے تو کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی گزارنے والے لوگ بن جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. قالن, اچھا آگے حدیث تھی, قیامت کے قریب بدکار لوگ سعادت مند بن جائیں گے, ٹھیک ہے, یعنی جو قوم کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہوں گے اور بڑے جو ہے وہ عزت والے سمجھے جائیں گے, وہ دراصل اس قوم کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے. جیسے کہ آج کے دور کے اندر جو کھلاڑی ہوتے ہیں, جو تماشے کرنے والے ہوتے ہیں, ناچ گانے والے لوگ ہوتے ہیں, جو ایک زمانے میں بدترین لوگ سمجھے جاتے تھے قوم کے, آج جو ہے وہی بدترین لوگ جو ہے وہ سٹارز بن گئے ہیں, ٹھیک ہے, وہی بدترین لوگوں کو کہتے ہیں آج کل آئیڈلز کہتے ہیں, اور آئیڈل وہ ہوتا ہے جس کی پوجا کی جاتی ہے, رائٹ, جس کی بات مانی جاتی ہے, جس کی پوجا کی جاتی ہے, تو ہر قوم کے اندر وہ آئیڈلز کا جو ہے وہ پورا شور سٹارٹ ہونا شروع ہو گیا. تو وہ کون ہوتے ہیں آئیڈلز بننے والے؟ وہ بدترین لوگ ہوتے ہیں اس قوم کے, لیکن وہ اس قوم کے معبود بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آگے تھا کہ قیامت کے قریب دین پر چلنے والا مثل چنگاری ہاتھ میں لینے والا ہوگا, یعنی بہت مشکل ہو جائے گا دین پر عمل کرنا, اور اس کے بارے میں ہم نے کافی بات کری تھی, اپنے ایک بزرگ کے بیان سے بھی کچھ واقعات آپ کے سامنے بطور ریفرنس کے پیش کیے تھے کہ کتنا مشکل ہو گیا دین پر عمل کرنا, اور دین سے محروم ہو جانا آج کل کتنا آسان ہو گیا ہے, تو اس وجہ سے بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے, اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے. اس وقت قیامت کے قریب لوگوں میں دنیا کی محبت اور موت سے نفرت ہو جائے گی, تو یہ وہ حدیث مبارکہ ہے کہ جس کے تحت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے تمام حالات کی ایک فائنل الٹیمیٹ ڈائگنوسس بتا دی ہے کہ یہ ریزن ہے کہ جس کے وجہ سے تمہارا یہ معاملہ دنیا کے اندر ہو جائے گا. تو اب اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لینس ہے نا, ہوتا ہے نا کہ سینگ تھرو ہز لینس, سینگ دا ورلڈ تھرو ہز لینس, ٹھیک ہے, کہ آپ کسی دوسرے کے چشمے کو لگا کر کے دیکھیں تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا, رائٹ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چشمہ ہمیں دے دیا کہ دیکھ لو اس چشمے کے تھرو, تمہیں دنیا میں سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے. تو اب ہم پھر بھی اس چشمے کو استعمال نہ کریں, ہم اس لینس کو استعمال نہ کریں جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پریزنٹ کر دیا, ٹھیک ہے, کہ سارے مسئلوں کا یہ حل ہے. अब हम फिर भी जो है वो इधर उधर हल तलाश करते, यानी हल तो दूर की बात है, यानी मसले का कॉज हम इधर उधर तलाश करते फिरते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ठीक है। तो ये कैसे मुसलमान है कि अल्लाह के रसूल को हम रसूल कहते भी हैं और नबी कहते भी हैं, लेकिन उन्होंने जो डायग्नोसिस बताई हम उसकी तरफ देखना ही नहीं चाहते, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि हुब्ब दुनिया व कराहियतुल मौत जो है ना वो असल वजह बनेगी तुम्हारी इस जिल्लत और रसवाई की। ये हुकूमत शुकूमत में वजह नहीं बनेगी कि हुकूमत नहीं रहेगी तुम्हारे पास, या हुकूमत आ जाएगी, या हुकूमत ये सारी माल दौलत नहीं होगा, या साइंस टेक्नोलॉजी नहीं होगी, या ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, इत्तेहाद नहीं होगा। आज एक और भी बड़ी मुसीबत है, इन मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं है, इस वजह से सारा हो रहा है, ठीक है। तो मतलब हद होती है ना हर चीज़ की। बहरहाल इस बारे में हम काफ़ी बातें कर चुके हैं, आगे चलें। क़यामत के करीब आदमी जानवरों की तरह खाएगा, तो फरमाया था कि उस वक्त कायम नहीं होगी, क्योंकि जब तक ऐसी कौम ना पैदा हो जाए कि जो कि गाँव गायों की तरह से अपने खाएंगे। तो इसकी तस्वीर हमने पढ़ ली थी। क़यामत के करीब आदमी हलाल और हराम की परवाह नहीं करेगा, तो यानी ये फिक्र ख़त्म हो जाएगी। और इसके तहत जो है वो हमने जो उन्होंने अपनी तशरीह में लिखा था कि हराम पेट में चला गया तो मेरी इबादत कबूल नहीं होगी, और जो मेरा जिसम इस हराम माल से परवरिश पा रहा है इस जहन्नुम में जाएगा। तो ये बात भी हमने कर दी थी, ठीक है, कि इस जमाने में ना हराम से बचना जो है वो कितना ज्यादा मुश्किल हो गया। जैसे कि सूद जो है वो हराम होता है, लेकिन सूद का धुआं तो हर एक को पहुंचेगा, और हराम का मामला ऐसा होता है कि जैसे कि दूध के अंदर अगर एक कतरा भी पेशाब चला जाए तो पूरा दूध नजिस हो जाता है ना। तो उसी तरीके से आपकी सारी आमदनी हलाल है, लेकिन उसके अंदर आपने थोड़ा सा हराम शामिल कर लिया तो सारी आमदनी को वो हराम कर देता है। ये है तकवा की अल्टीमेट हाइट, ठीक है। ये है एक्चुअली यानी ये डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। लेकिन हमारा मामला ये है कि कोई दुनिया में एक फर्द ऐसा ना बाकी बचा हो, ठीक है, कम से कम शहरों में रहने वाला, ठीक है, गांव देहात में कोई अपना उगाए अपना खाए और दुनिया से बिल्कुल हटखट करके रहे तो शायद वो जो है वो हराम से बचा हुआ, ठीक है। लेकिन अदरवाइज तो कोई ऐसा मजा नहीं मिलता। तो अब इससे जो है ना वो एक दूसरी कैफियत भी पैदा होती है, बल्कि शैतान पैदा करता है, और वो मायूसी वाली कैफियत होती है, ठीक है। वो शैतान के सामने हथियार डाल देने वाली कैफियत पैदा होती है, तो उससे भी बचना जरूरी है। तो इस वजह से हमने इस टॉपिक के ऊपर अच्छी खासी तफसील के साथ आपके सामने एक दूसरा एस्पेक्ट बयान किया था ताकि हम इस मायूसी से बच सकें, क्योंकि शैतान के हर वार के सामने हमने बंद बांधना है, ठीक। ये नहीं है कि शैतान के सिर्फ एक वार के सामने बंद बांधना है कि जी हराम में इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। ये तो एक वार है ना उसका कि हराम में इन्वॉल्व करता है, और भी तो वार है उसके, ठीक है। वो तो दुश्मन है ना, अजली दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है, ठीक है। तो वो तो हर तरीके से वार करता रहता है। तो इस वजह से हमने इस वाले वार यानी मायूसी वाले वार के सामने बंद बांधने के लिए भी कुछ बातें करनी थी। अल्लाह ताला से दुआई कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी उससे फायदा पहुंचाए और आपको भी फायदा पहुंचाए। आगे था कि क़यामत के करीब नमाज पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा, यानी जहालत जो है वो इतनी ज्यादा हो जाएगी कि सब जो है ना वो अपने बज़ाहिर ऐसा लगता है कि सब जो है वो अपनी इज्जत बचाने की खातिर इमामत से कतराएंगे, ठीक है। कि अगर खड़े हो गए ना आगे जा करके तो फिर सबको पता लग जाएगा कि इसको तो कुरान की तिलावत नहीं आती, इसको तो नमाज का पता ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि हम में से अक्सर का मामला ये है कि अगर नमाज में गलती हो जाए तो हमें नहीं पता कि गलती को कैसे ठीक करना है, ठीक है। सजदे सहव के मसाइल हमें नहीं पता, और हैं भी इतने तफसीली कि वो शायद उलमा को भी याद ना रहते हो, ठीक है। सजदे सहव की इतनी टेक्निकलिटीज हैं, ठीक है। तो फिर अब किसी इंसान का दिमाग जो है वो दुनिया के अंदर मुस्तकिल मगन रहता है, तो उसको तो पता है कि जी मैंने तो गड़बड़ करनी है नमाज में, तो अगर मैंने गड़बड़ करनी है तो मैं फिर अगर सही तरीके से उसका इजाला ना कर सका तो लोग मुझे बेवकूफ़ समझेंगे, लोग मुझे जो है वो जाहिल समझेंगे। तो हर कोई जो है वो इमामत से कतराने की कोशिश करेगा। ये एक इसकी तशरीह हमने बयान करी थी। आगे है कि क़यामत के करीब के महबूब तरीन लोग, तो ये वो लोग होंगे कि जो कि नबी अलैहिस्सलाम से इतनी मोहब्बत करेंगे कि अपना माल और अपनी औलादें देख करके भी जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर मुलाकात करना मुमकिन हो तो वो भी कर गुजरेंगे। क़यामत के करीब के बाद लोगों का सवाब अव्वल लोगों की तरह से होगा, कि एक वक्त आने वाला है कि यानी उस वक्त जो है इतने फितनों के बावजूद ऐसे लोग मौजूद होंगे कि नबी अलैहिस्सलाम ने इस तरह से फरमाया कि शायद वो जो है ना बिल्कुल पहले लोगों जैसे होंगे, यानी नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा के जैसे, ठीक है। लेकिन हकीकत तो यही है, और یعنی اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ صحابہ سے بڑھ کر کے تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کسی اور کو نہیں مل سکتی، ٹھیک ہے، لیکن کم از کم اپنی قربانیوں کی وجہ سے اور اپنے اعمال کی وجہ سے اور اپنے ایمان کی پختگی کی وجہ سے نا وہ قریب قریب پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے. اس کے آگے تھا کہ ایسا وقت آئے کہ آدمی کو صرف مال کام دے گا، یعنی دنیا کے اندر جو ہے وہ مال پیسہ ہی جو ہے وہ عزت کا اور کام کروانے کا وہ ذریعہ رہ جائے گا، تو جس کے پاس یہ ہوگا اسی کو فائدہ ہوگا، جس کے پاس یہ سب نہیں ہوگا تو وہ پھر مشکل کی زندگی ہی گزارے گا. آگے تھا کہ بعض کپڑے پہننے والی عورتیں ننگی ہوں گی، یا بلکہ دو جماعتوں کے بارے میں فرمایا کہ ایک وہ جو کہ لوگوں کو ایسا ظلم کریں گے لوگوں کے اوپر کہ کوڑوں کے ذریعے گایوں کی دموں کے جیسے کوڑے ہوں گے جس سے کہ وہ لوگوں کو مارا کریں گے، اور دوسری وہ جماعت کے ایسی عورتیں ہوں گی کہ جنہوں نے لباس پہنا ہوگا لیکن پھر بھی وہ ننگی ہوں گی. تو اس کے تحت پھر ہم نے حجاب کے اور ستر کے مسائل کے بارے میں کچھ بات کری تھی کہ یہ جو ستر پوشی ہے یہ ہمارے دین کے اندر پہلا فرض ہے، اولین فرض ہے، ستر پوشی نہ ہو نماز بھی نہیں ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں اور باتیں کری تھیں. اس کے بعد تھا کہ قیامت کے قریب پیشوا جاہل ہوں گے، تو علماء جو ہیں وہ اٹھا لیے جائیں گے، اور علماء کے اٹھانے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ علم اٹھ جائے گا، یعنی علم کا تعلق جو ہوتا ہے وہ علماء کے ساتھ ہوتا ہے. کتابیں جو ہیں وہ موجود رہیں گی، قرآن موجود رہے گا، قرآن کی حروف تو اس وقت اٹھیں گے جب دین جب دنیا سے مومنین اٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے، اس وقت جو ہے وہ قرآن کے حروف بھی جو ہے نا وہ اریز ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت نہیں اریز ہوں گے قرآن کے، قرآن موجود ہوگا، ٹھیک ہے، حدیث کی کتابیں بھی موجود ہوں گی لیکن علم پھر بھی اٹھ جائے گا، ٹھیک ہے. تو علم جو ہے اس کا کیا پتہ لگا، سادی سی لاجک ہے کہ علم کا تعلق کتابوں سے نہیں ہوتا، علم کا تعلق جو ہے وہ انسانوں سے ہوتا ہے. اس کے بعد قرآن سیکھو اور سکھاؤ، اس کے بعد میں بھی ہم نے کل ہی پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم علم کو خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ، اس لیے کہ جب علم اٹھ جائے گا نا تو پھر فتنے ظاہر ہو جائیں گے اور پھر کوئی جو ہے وہ ریزولوشن کرنے کے لیے لوگوں کو نہیں ملے گا. اور آخری میں وہ والی حدیث جو آج ہم نے پڑھی کہ اہل کتاب کے طرز پر قرآن پڑھنا منع ہے، تو صرف عربوں کے طرز کے اوپر ہی قرآن کی تلاوت کرو، ورنہ اس قرآن کو پڑھنے سے تمہاری روح کو کتنے فائدے ہو سکتے تھے، تم ان تمام فائدوں سے محروم رہ جاؤ گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کلاس ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا اس کو ہمارے لیے خیر کا باعث بنائے، اور کسی بھی بات کو ہمارے خلاف بطور حجت کے ہرگز استعمال نہ فرمائے. اللہ تعالیٰ سے رحم کی اپیل کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، عمل کی توفیق بھی اللہ ہی سے مانگتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اپنی اور اپنے آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. اسی نیت کے ساتھ ہم نے یہ والا باب پہلے پڑھ لیا تھا کیونکہ ہم ان حالات سے گزر رہے ہیں کہ جن کے اندر ایمان کی حفاظت کرنا بہت مشکل نظر آتا ہے، تو ہم ان چیزوں سے زیادہ واقف ہو جائیں، ان باتوں کے، حدیثوں کے مختلف اسپیکٹس کو ہم ڈسکس کر لیں تاکہ یعنی ان مسائل میں اپنے آپ کو بچانا اور ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا، اپنی اولادوں کو بچانا ہمارے لیے زیادہ آسان ہو جائے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرمایا کہ ایک عبادت کرنے والا جو ہوتا ہے اس کے مقابلے میں ایک سمجھ رکھنے والا وہ شیطان کے اوپر 1000 درجہ زیادہ بھاری ہوتا ہے. تو جب سمجھ انسان کو حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے لیے پھر اپنے آپ کو بچانا بھی شیطان کے وار سے آسان ہو جاتا ہے. تو یہ اصول تو موجود ہے، بس دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی سمجھ عطا فرمائے اور فتنوں سے بچائے بھی. تو اس کے ساتھ کلاس ختم کرتے ہیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.